हमारे प्यारे श्रोताओं, धारवी वाता रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है स्मिता मेहरा और मेरे साथ है पूर्वी अग्रवाल।
यह कार्यक्रम हर रविवार को इसी टाइम पर आएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ते इस कार्यक्रम में आपदा जोखिम घटाव से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होगी।
आपदा के जोखिम घटाने में श्यामला संसाधनों का सबसे ज्यादा महत्व है,
इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम श्यामला संसाधन और थार का रेगिस्तान पर बातचीत करेंगे।
साथियों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि श्यामला संसाधन क्या है।
जिन संसाधनों को काम में लेने का हक सबको बराबर हो, वही श्यामला संसाधन है।
सबका क्या मतलब है?
मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पति, मतलब इन सबको फलने फूलने और श्यामला संसाधनों को काम में लेने का पूरा हक है।
तो क्या सड़क श्यामला संसाधन है?
हाँ, सड़क, रास्ते, चौपाल सभी श्यामला संसाधन है।
तो फिर हमारे गांव की नाड़ी, उसका आगोर, आगोर में बनी बेरी, कुआ, गांव की ओरण, गोचर, ये सभी श्यामला संसाधन है।
हाँ, ये तो श्यामला संसाधन है ही। इनसे मिलने वाला पानी, चारा, लकड़ी, कैर, सांगरी, कुम्पटी, मिट्टी, खाद, बीज, हवा, यह सब भी श्यामला के संसाधन ही हैं।
अब समझ में आया कि श्यामला संसाधन किसे कहते हैं।
लेकिन थार के रेगिस्तान में श्यामला संसाधनों का क्या महत्व है, यह भी जानना जरूरी है।
हाँ हाँ बहन, ये तो जानना बहुत जरूरी है।
श्यामला संसाधन जिसमें चारागाह एवं पेयजल स्रोत प्रमुख है, रेगिस्तान में जनजीवन के मुख्य आधार रहे हैं। बार बार पड़ने वाले अकालों में श्यामला संसाधन यहाँ के जनजीवन के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम आते रहे हैं।
अच्छा, कैसे?
श्यामला संसाधनों से हमें पानी, चारा, ईंधन, लकड़ी, फल सब्जी, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने वाली जैव विविधता और भूजल संरक्षण जैसे बहुआयामी जुड़ाव ने सूखे मरुस्थल में श्यामला संसाधनों के जीवन को फलने फूलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
ओहो, अब समझ में आया। अगर जीवन शरीर है तो श्यामला उसका दिल।
वाह, तुमने तो बड़े अच्छे तरीके से श्यामला के साथ साथ उसके महत्व को भी समझा दिया। लेकिन एक बात और समझने वाली है।
वो क्या है?
बहन, इन दिनों श्यामला की हालत बढ़िया नहीं है। शरीर तो ठीक है पर दिल कमजोर हो गया है।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सीधे सीधे बताओ ना।
अरे, बात यह है कि आजादी के पहले तक श्यामला संसाधनों की देखभाल और विकास समुदाय करता था। समुदाय के अपने नियम कायदे होते थे, औरन के अलग नियम तो गोचर के अलग नियम, नाड़ी और आगोर के भी अलग नियम।
तो क्या हुआ, इससे श्यामला की हालत कैसे खराब हो गई?
आजादी के बाद श्यामला सरकारी हो गया, देखरेख का जिम्मा हो गया पंचायत का, समुदाय हो गया किनारे और श्यामला अनाथ।
अरे बहन, श्यामला संसाधन कोई कपड़े का थान है क्या, जो सरकार ने समेट कर तिजोरी में रख दिया? जमीन, नाड़ी, बेरी, कुआ, पेड़ पौधे, घास, जानवर सब तो गांव में ही है।
बहुत कुछ बदल गया है बहन।
क्या बदल गया है?
क्या बदल गया है ये समझने के लिए तो गाँव में चलना पड़ेगा।
तो चलो गांव में, देर किस बात की।
चाहे काली गांव पे छावे, चाहे पीड़ा आपत आवे, सब मिलके उसे मिटावे। धोरा धरती में, ओ धोरा धरती में, धोरा धरती में।
कार्यक्रम के बाद हमारा गांव में हम मिलते हैं बाड़मेर जिले की बालोत्रा पंचायत समिति के रामदेवपुरा गांव वालों से। नमस्कार डूंगर जी। नमस्कार दमाराम जी।
नमस्कार। नमस्कार।
आप रे गावरी ओरन रो इतिहास काई है?
ये देवी देवी जो पाकर में प्रकट हुई ना, आवाज निकली नहीं, एकदम बड़बड़ाती आवाज हुई, आवाज बजे में जो जानवर भिड़किया गया भी छड़ते जो भिड़की ने वे जीती पहुंची उन परिधि में ओरन घोषित कर दी।
आप बताओ कि ओरन री देखभाल सारू किन तरीके रा नियम बनियोड़ा है?
कोई जगह लकड़ी ओण में काटने नहीं, जलावन वास्ते खेतों में लकड़ी काम में लकड़ी सूखी लकड़ी लावा नहीं घर में।
ये कट जाएगा तो ये ओरन किस बात का, ओरन में ये सारा बकरी क्या खाएंगे?
पहला इन ओरन माए अणु तो ही घास कचरो और रूखड़ा हुआ करता है, पर अब कम हुआ है। इन रो खास के कारण रहे हो
ये है कि पुराना जो दरखत था ऑटोमेटिक कैसे पता नहीं कैसे हुआ, तो हमने देखा वो दराज, ऐसे दराज घुसते 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 वो अंदर से सूख गए बाहर से। अब ऊपर देखो तो उनका डाल हाल है, तो वो भी कमजोर कमजोर।
कितनी भातरा घास और रूखड़ा हुआ करता।
कैर, खेजड़ी, बोरड़ी, कुमट, देसी बबूल और छोटी झाड़ियों, खीप है, फोगड़ा है, ये होता है।
इना माइसू अब कौन कौन सा घास और रूखा रो नाम निशाने ही नहीं रियो।
फोगड़ो एक है, जब वो नहीं मिले देखने वास्ते।
इनमें से कम होवन रहे और जड़ मूल सियों खत्म होवन रहा के खास कारण है।
काटने से नहीं गए, कारण समझ में नहीं आया, वो धीरे धीरे देख, हमारी वो तो हमारी देखने में गए।
आप बताओ कि पहली चारों ज्यादा खरीदना पड़ता या अब?
पहली से अभी ज्यादा खरीदना पड़ता है। पहली
तो औरन की जरूरत ही, पर अब भी औरन की जरूरत है या कोनी?
ऐसा है साहब कि अभी हमारे शेष मेन पेस्ट कलेजा हमारे पास यही रह गए गांव के पास। ऐसा है कि मेरे दादे के पास मान लीजिए 150 बीघा जमीन, अब 10 घर हो गए, हम वो 150 में खेती करते तो 100 बीघा खेती कर लेते, तो शेष 50 बीघा उसके पास में बच जाती थी। उनके पास में उस समय इतनी औरन की उनकी जरूरत नहीं थी।
कई जानकार लोग बतावे हैं कि श्यामला संसाधन माई जे घास और रूकड़ा घना हुआ है, उन रोक खेती माते भी अच्छो असर पड़ियो है। आपनों इनमें के मारनो है?
ये जमीन है ये ऐसी कि नहीं यूरिया यूरिया नहीं देते, तो खाद बार डालते नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला। अभी पहली जमीन 10 बरस पड़ी रहती थी प्रति टाइम, और उसमें लगाते तो 3 साल बहुत फर्स्ट क्लास उसमें उपास होती थी बिना कुछ दिए पिए।
कई लोग आ बात भी बतावे कि पहला ओरण में मोकला जंगली जानवर और जीव जंतु या करता था, पर अब कम हो गया। आप रो के मारनो
पहला पहला जंगली जानवर है घनी होता सावन में, हमें हमें आजकल है कौन, कम हो गया।
ई ओरण देरी की भी यह हालत है, अगर आग भी नहीं रहेला तो क्या फर्क पड़ेला?
इनके काश्तकार को देंगे तो हमारे गांव मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, और देंगे हमारे गांव वाले को तो लेंगे नहीं, जान देने के लिए सारे गांव पूरा इकट्ठे होकर तैयार हो जाएंगे, मर जाएंगे और किसी को नहीं देंगे।
बहुत बढ़िया, सुनो सा गांव वाला तो आ बात मानवा के ताई तैयार ही नहीं है कि ओरण नहीं रहेला।
इके वास्ते तो भी मर जावेला, पर ओरण कठे भी नहीं जाबा देवे।
बहुत बहुत धन्यवाद डूंगर जी और दमाराम जी, बहन गांव वालों से हमें बहुत सारी जानकारी मिली।
जो ज्ञान रे कठरी आवे हर जोखिम दूर भगावे, सब मिलकर मंगल गावे धोरा धरती में, ओ धोरा धरती में, धोरा धरती में।
उन्नति ने बाड़मेर जिले के रामदेवपुरा गांव और जोधपुर जिले के कोलू गांव में श्यामलात पर काम शुरू किया है। काम शुरू करने से पहले उन्नति ने अध्ययन भी किया।
अध्ययन और श्यामलात के बारे में बात करते हैं हम उन्नति के श्री दिलीप जी विदावत से।
दिलीप जी ये बताइए कि श्यामलात पर काम करने की सोच कहां से और कैसे बनी?
देखो हम उन्नति के मार्फत व्यक्तिगत और टिपास्तर का काम किया और उसमें काफी सफलता भी मिली, पर व्यक्तिगत और टिपास्तर में ये देखने में आया कि वो एक व्यक्ति को उससे लाभ मिल रहा है। सामलात पर सोच तब आई जब ये सामने आया कि भी अगर आपदा के जोखिम को कम करना है तो सामलात पर काम करना जरूरी है।
सामलात पर आपने एक अध्ययन किया है, इस अध्ययन से सीख क्या निकली?
इन दोनों जगह में एक सीख में जो निकल के आया कि पारंपरिक तरीके से जो है जो प्रभावशाली वर्ग है हमेशा से इसका प्रबंधन और नियंत्रण उनके हाथ में रहा है, लेकिन स्थितियां बदलने के बाद आज स्थिति ये आ गई है कि जो प्रभावशाली परंपरागत लोग जो इसके प्रबंधन को हाथ में रखते थे उनके लिए ये अब उपयोगी नहीं रहा है, लेकिन आज भी वो होल्डिंग उन्हीं की है, जबकि ये सबसे ज्यादा उपयोगी अब दलित समुदाय के लिए रह गया है, क्योंकि दलित समुदायों के पास परंपरागत रूप से भी व्यक्तिगत जमीनें कम थी खेती योग्य, तो उनको आज पशु चराने के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही है उसके अंदर। तो ये समुदाय की प्रबंधन की एक पारंपरिक व्यवस्था है और ये समुदाय द्वारा ही बनाई गई है और उसी को लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक औपचारिक कोई समिति बनी हुई है, लोग जब भी कोई समस्या आती थी मिलते थे, बैठते थे, फिर कोई निर्णय करते थे, और वो आज भी उसी हिसाब से चल रहा है। सरकार की समिति हालांकि अभी बन रही है, पर ये सरकार की समिति से अलग हटकर है। और सरकार की जो समितियां बन रही है उसमें अगर इस ढांचे को जोड़ लिया जाए तो वो और ज्यादा मजबूत हो सकता है। नहीं, उसमें ज्यादातर दोनों ही जगह देखा कि ज्यादातर जबानी है, जब भी कोई समस्या आती है तब वो इकट्ठे होते हैं, या फिर कुछ नया काम करना है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो फिर जैसे कि कोड़ू बाबू जी की ओरण में मरुगोचर योजना के तहत कुछ काम करने की सोची गई थी पंचायत ने, तो पंचायत ने काम शुरू कर दिया, समुदाय को जोड़ा नहीं था, तो समुदाय ने फिर जो समुदाय के जो मुखिया थे उन्होंने विरोध किया और पंचायत का पूरा काम बंद करवा दिया।
अच्छा,
निर्णय भी कहीं नहीं लिखे जाते, केवल निर्णय हुआ उसके बाद में उसको सिर्फ क्रियान्वित करने की बात सी दिया जाती है। जैसे हम कोड़ू बाबू जी की अगर उदाहरण लें तो लोगों ने बताया कि भी 2 साल पहले यहाँ से कोई रेवड़ चराने वाले आए थे और उन्होंने लकड़ियां काट ली, लकड़ियां काट के फिर वो ले जाके बेच दी उन्होंने। लोगों को पता चला, लोग इकट्ठा हुए, निर्णय लिया कि भी इसका पता लगा वो कौन है, और सीधे वो क्रियान्विति पे चले गए, उन्होंने इधर उधर पता किया और उसको पकड़वा भी दिया।
कुल मिलाकर शामलात के मामले में आगे की दिशा हम क्या देख रहे हैं?
ये एक समझ बनी है कि अगर अकाल के असर को कम करना है तो शामलात पे काम करने की जरूरत है। पंचायत और समुदाय मिलकर इसको विकसित भी करें, नए तरह के पौधे लगाएं, चारागाह का विकास करें, और एक प्रबंधन व्यवस्था ही पंचायत और समुदाय मिलके करें, तो इस तरह का एक प्रयास शुरू कर दिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी।
हाँ तो साथियों, थार रे बाता कार्यक्रम में आज हमने सुना श्यामला संसाधन और थार का रेगिस्तान। इस कार्यक्रम में हमने गांव में ओरण पर गांव वालों की समझ और संस्था के अध्ययन पर जानकारी ली।
इसकी अगली कड़ियों में हम सुनेंगे उन लोगों के विचार जिन्होंने श्यामलात संसाधनों के महत्व को जानते हुए इन्हें बचाने बढ़ाने के लिए सरकार, पंचायत और गांव वालों को प्रेरित करने, शोध एवं साहित्य लिखने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
कार्यक्रम थार रे बाता में बस इतना ही।
आपके गांव के जो भाई बहन आज यह कार्यक्रम नहीं सुन पाए हैं, उन्हें बताना कि हर एक कार्यक्रम लगातार 2 बार प्रसारित होगा, मतलब एक बार में छूट भी जाए तो दूसरी बार को इसी टाइम पर जरूर।
तो साथियों, अगला कार्यक्रम सुनना और इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार भेजना मत भूलना। आप अपने सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं, उन्नति विकास शिक्षण संगठन लहरे रिसोर्ट के पास
चौपासनी जोधपुर,
फोन नंबर 02913204618।
जाते जाते एक बात और बताएं कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कौन सी बातें ज्यादा अच्छी लगी, इसमें आप कुछ बदलाव चाहते हैं, इसमें जिस मुद्दे पर बात हुई है उससे जुड़ी आपकी या आपके गांव की कोई समस्या है तो अभी आप 1 घंटे तक हमसे बात कर सकते हैं। आपके यहाँ हुए ऐसे किस्से भी आप हमें बता सकते हैं। और हाँ, रोजाना सवेरे 10 से शाम 5 बजे तक टेलीफोन पर इस कार्यक्रम के बारे में आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर याद रखें 02-91-32-046-18।
आपके सुझाव और विचार भी हमें पहले एपिसोड से ही मिलने लगे हैं। आपके फोन आने से हमारी खुशी और उत्साह भी लगातार बढ़ रहा है। हमें अच्छा लग रहा है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है और आप लगातार सुन भी रहे हैं। अभी तक हमें बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, नागौर जिलों से आपके सुझाव मिले हैं। मुख्य सुझाव इस कार्यक्रम का समय 15 मिनट से ज्यादा रखने का है, इस पर हम ध्यान देंगे। इसके अलावा कई अन्य गांवों में, खासकर बाड़मेर और जोधपुर जिले में खारे पानी की समस्या की जानकारी भी आपने हमें दी है।
आने वाले एपिसोड्स में हम आपके खास सुझावों को नाम सहित भी रेडियो पर सभी को बताने का प्रयास करेंगे, मतलब आप फोन करते रहिए और इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा बनाने में पूरा सहयोग भी करिए।
तो सोच क्या रहे, उठाइए फोन और 02913204618 पर तुरंत कीजिए हमसे बात।